को भगवान मिले, भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी, भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही हैं, सारी फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी, भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही हैं, सारी फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी, भक्तों को भगवान मिले। अविनाशी प्यार लुटाए, अविनाशी प्यार लुटाए, भरपूर किया है सबको, रत्नों से सजाया हमको, बाबा तो है कल्याणी, भक्तों को भगवान मिले।
ओम शांति। जो सीरीज चल रही है हमारी 16 कला संपूर्ण, उसमें आज का टॉपिक है भक्तों की पालना कैसे करें। पालना वही कर सकता है जो संपूर्ण है, जो भरपूर है, जो देने के योग्य है। वही व्यक्ति, वही आत्मा या वही देवकुल की आत्मा या देवताएं पालना कर सकती है। जो खुद अपूर्ण है, जो दूसरों से लेने की इच्छा रखते हैं, वह दूसरों की पालना नहीं कर सकते। लेकिन आज का टॉपिक हमारा है भक्तों की पालना। भक्त क्या होते हैं? थोड़ा सा चाहिए उसको, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा मिलता है उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्ट होकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो आज हम देखेंगे ऐसे एक एक करके पालना कैसे करते हैं। तो पहले है स्नेह। भक्तों को भगवान से बहुत स्नेह होता है, प्यार होता है। उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं और तमन्नाएं होती है कि हम भगवान से मिले और कुछ पाए। तो जहां स्नेह होता है वहां सामने वालों को बचाया जा सकता है। किससे बचाया जाता है? बुराइयों से, गलत मार्ग में जाने से। उनकी कमी कमजोरियों को ढका जाता है, ना कि उनकी कमी को बताया जाता है। ऐसे ही कुछ है, जब एक समय की बात है कि लंदन से जयंती दीदी पार्टी लेके आई थी मधुबन। उस समय मधुबन बहुत छोटा था, तो उनके साथ एक सीआईडी ऑफिसर भी आ गए थे। लेकिन जयंती दीदी को पता नहीं था कि सीआईडी ऑफिसर भी आए, वो मधुबन में आने के बाद पता चला। वो इस लक्ष्य से आए थे कि वास्तव में इसका लक्ष्य क्या है, क्या करते हैं लोग, सिक्योरिटी करने आए थे वो। तो ये बात जयंती दीदी को पता चली, तो जयंती दीदी ने बड़ी दादी को बताया। जब कोई चीज़ हमें पता चलता है, कोई अनजान व्यक्ति हमारे जगह आ गया और वो जासूस कर रहे हैं, तो हमारा प्रथम कर्तव्य होता है कि जो मेन सदस्य है, हेड है, उनको हम बताएं। तो दादी को बताया। दादी ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो विश्व का कल्याणकारी हैं, तो हम किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं चाहते। तो दादी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो भोजन है और यहाँ की जो प्रेरणा मिलेगी उसको, यहाँ के लोगों से जो शिक्षा मिलेगी उसको, वो उनसे सीख के जाएगा। तो फिर इस तरह से यहाँ का जो भोजन खाएंगे तो उनका मन परिवर्तन हो जाएगा। तो दादी जी से सब मिले, यहाँ से देखा एक एक चीज़ का इंक्वायरी की, तब उसे पता चला ये संस्था तो विश्व कल्याण के निमित्त है। तो उनके अंदर जो एक प्रकार की जासूस की भावना थी, दूसरे को गिराने की भावना जो होती है जासूस के अंदर कि सत्य क्या खोजने की, तो फिर वो जाते समय अपना बात बता के गए कि दादीजी मैं इस उद्देश्य से आया था। तो दादीजी की स्नेहपूर्ण पालना और सबके सकारात्मक विचार और अच्छे विचार, अच्छा वातावरण, अच्छा भोजन भगवान की याद में बनाया हुआ, उनके मन को कैसे परिवर्तन कर दिया और उनके चित्त में परमात्म प्रेम भर दिया। तो जब तक हमारे मन में कोई भी आत्मा हो, निस्वार्थ और सच्चा स्नेह नहीं है, तब तक हम उस आत्मा की पालना नहीं कर सकते। पालना करने के लिए निस्वार्थ चाहिए। सामने वाले से कुछ चाह अगर हम रखते हैं तो पालना नहीं होती हो। आज हम कुछ दे रहे हैं तो कल उनसे, अगर कल नहीं मिलता है तो हम मन मुटाव आ जाता है या उससे बदले लेने की भावना मन में उत्पन्न होती है। इसीलिए पालना करने से पहले हमें संपन्न बनना है, कोई भी चीज में परफेक्ट बनना है, तभी हम उसको पालना दे सकते हैं। ऐसी एक घटना है कि चंद्रशेखर आजाद की जीवन में एक घटना दिखाती है कि वो बचपन में तो वो छोटे होते थे तो वो स्कूल नहीं जाता था, पाठशाला नहीं जाता था और खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका होता है। तो भीलों के गांव में जाता था और हर दिन अपने पिताजी से मार खाता था, फिर भी वो नहीं मानता था। तो एक समय ऐसे होता है कि वो भील, उस समय कोई फंक्शन होता है होली और वो जाति का होता है ब्राह्मण, तो भील के गांव में जाता है और सवेरे से शाम तक रहते हैं। तो ये बात उसकी माँ को पता चलता है तो माँ सोचता है कि मेरा बेटा भील लोगों के गांव में गए हैं और वहां जाके वो कुछ उल्टा सीधा ना खा ले, क्योंकि ब्राह्मणों की मर्यादाएं होती है क्या खाना और ना खाना, कुछ भी चाहे वो खा ले ऐसे नहीं। तो माँ भागते हुए अपने बच्चे को लेने जाती है और ले जाके रंग गुलाल में वो खेलते रहते हैं, उसको वहां से ले आती और उसे नहलाती और धुलाती है। तो ये घटना की बात एक दो दिन के बाद उसको पता चलती है उनके पिताजी के कि मेरा बेटा भीलों के गांव में गया था। भील को बहुत नीचे दृष्टि से देखा जाता है समाज में। तो कोई उनके मित्र होते हैं, उनके साथ काम करने वाले जो उनके पिताजी होते हैं चंद्रशेखर, तो उनके बताते हैं तुम्हारे बेटा भीलों के गाँव में गया था और पता नहीं क्या क्या खा के आया है। तो पिताजी बहुत क्रोधित और गुस्से हो जाते हैं और घर में आकर छड़ी रखे रहते हैं और इतने सारे छड़ी रख देते हैं। तो चंद्रशेखर से कहते हैं कि जो छड़ी पसंद है वो उठा लो, क्योंकि हर दिन तो मार खाने की आदत रहती है उसकी। तो कहता है क्या तुम भीलों के गांव में गए थे? तो बोलता है आंख से आंख मिलाकर अपने पिताजी से कहता है हाँ पिताजी मैं गया था। तो फिर उनकी माँ कहती है तुम बड़े से आंख से आंख मिला के बात करते हो, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि बड़ों से कैसे बात करनी है? तो वह चंद्रशेखर आजाद कहता है माँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मैंने आंख से आंख। तो उनकी माँ उस समय उनको बचा लेती है और वो कहती है कि मैं भी इनके साथ गई थी, नहीं तो वह उस दिन बहुत मार खाता। तो जहाँ स्नेह होता है वो कहता है कि मैं भी इनके साथ गई थी और जाके उसको वापस लाए, और इसने वहां कुछ भी ऐसा चीज नहीं खाया है जिसे आपने बताया होगा कि इसने उल्टा सीधा चीज खाया है जो कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो। तो उसने स्नेह इतना ज्यादा था माँ का कि उस बच्चे को बचा लिया। तो स्नेह जो होती है वो बुराइयों से बचाती है हमें। और फिर उसके बाद उसकी माँ ने समझाया कि ऐसा नहीं करते बच्चे, तुम्हें बार बार बताया जाता है कि तुम पाठशाला जाओ और पाठशाला ना जा ले कि आप भील के गांव में जाते हो। तो वो अपनी माँ से कहता है माँ मुझे आपके जैसा बनना है, पिताजी जैसा नहीं बनना है, क्योंकि पिताजी बार बार में डांट लगाते और मारते हैं। तो कहता है कि मुझे पिताजी जैसा नहीं बनना है, माँ जैसे बनना है, क्योंकि माँ के अंदर स्नेह होता है और स्नेह जो होती है वो बुराइयों के। और आगे चलकर वही भारत का चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना गया। तो प्रेम जो होती है कैसे जीवन को परिवर्तन करता है, तो ऐसी प्रेम की शक्ति होती है। दूसरा है बोल। बोल का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। एक बोल से बना महाभारत कहते हैं। हमारे बोल किसी के दिल में लग जाए, हमने भी सुना, सुशील भाई बता रहे थे, बोल हमें मधुर होना चाहिए, कम होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मधुर बोल तब तकलीफ देते हैं जब हम किसी व्यक्ति की झूठी गलानी करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठी गलानी बढ़ा चढ़ा के किसी की प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, है ना। और कई कई बोल एक भाई अपना, हम ऐसी कुमार सब बैठे थे तो बता रहे थे, वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो गांव से बाहर थे, तो ऐसे ही चल रहे थे रास्ते में तो कोई सेंटर का नाम मिला और चले गए सेंटर में अचानक ऐसी। तो कहा जाता है वो बहन जी ने इतने प्यार से उनसे बात की, इतने प्यार से, वो भाई बता रहा था आज तक मेरे से कोई भी इतने प्यार से बात नहीं किया, और उस प्यार के शब्द ने उसको भगवान से जोड़ दिया। उस बहन जी से अभी भी कोई कनेक्शन नहीं उस भाई का, वो तो पढ़ाई करता था। तो कहते वो प्यार अभी तक मेरे साथ चल रहा और उसी के कारण वो आज एक पक्का ब्रह्म कुमार बन गया। तो ऐसे अनुभव बता रहे थे। तो बोल बोल हमारे कितने मधुर, और अनजान था। तो जो हमारे स्नेह युक्त बोल होते हैं, रूहानी बोल होते हैं, पवित्र बोल होते हैं, उसमें आत्मा में सीधे जाती है और वो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है, उनका जीवन श्रेष्ठ कर्म की ओर प्रगति हो जाता है। तो ऐसे हमारे बोल हो, टोंट वाले ना हो, किसी के दिल दुखाने वाले ना हो, चुभने वाले ना हो। इसलिए कहा जाता है हमें अपने बोल पर नियंत्रण होना चाहिए। कोई किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला तो हम तुरंत मान लेते हैं, तो फिर हम दूसरा हम एग्रेसिव माइंड हो जाते हैं, सरुच उसे, हाँ बुरी बात बहुत जल्दी से मान लेते। तो हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए, या उनसे पूछो या सच में आपने बोला। कई बार होते व्यक्ति बोला नहीं होता, उनके बारे में पूरा झूठ होता है, और कई बार होते हैं जो हम देखते हैं वो भी कई बार गलत हो जाता है। इसलिए हमें अपने बोल पर नियंत्रण होना चाहिए। जब तक हमें 100% सत्य का मालूम नहीं हो जाए तब तक हम ना बोले तो ही बेहतर है, क्योंकि जब व्यक्ति को हम बोलते हैं तो हमारी मानसिकता निगेटिव हो जाती है और वो निगेटिव वाइब्रेशन उनको और निगेटिव करती है, वो अच्छा करने का प्रयास ही नहीं करती। तो सोचते हैं मैं किया ही नहीं, फिर भी इन लोग बोले जा रहे हैं। इसलिए जब तक हमें सत्य नियम पता चले तब तक हमें अपने बोल का प्रयोग ना करें उस आत्मा के लिए, तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए हमें अपने बोल पर नियंत्रण रहना चाहिए। तीसरी पॉइंट है व्यक्तित्व, जिसे बाबा कहते हैं चाल चलन। हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जो हमारा संपूर्ण बोल, देखना सुनना बैठना उठना, हमारे लोगों के प्रति क्या भावना है, लोगों से व्यवहार कैसा है, सब मिला के हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए हमारा। बाबा भी कहते हैं कि जब हमारे प्रभावशाली व्यक्तित्व होंगे तो हमारे कर्म को ही देख के कई लोग पूछते कि कहाँ से सब सीखा है ना। कई जो भक्त होते हैं वो देवताओं की आराधना करते पूजा करते हैं, तो सभी देवती देवताओं को नहीं मानते, कोई हनुमान को मानते, कोई कृष्ण को मानते, कोई लक्ष्मी नारायण को, तो उनका व्यक्तित्व तो उनको आकर्षित करता है। भले सभी के प्रति प्रेम होता है लेकिन किसी एक इष्ट देव को ही मानते हैं। जो कुछ होते हैं हनुमान के इष्ट देव होते हैं, वो लक्ष्मी नारायण से उसको कोई मतलब नहीं, राधे कृष्ण से कोई मतलब नहीं, देवियों से कोई मतलब नहीं, उसको केवल हनुमान से। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है जो आकर्षित करता है, उनके प्रति प्रभु आज्ञा इतनी ज़्यादा है कि प्रभु आज्ञा को सिर माथे करके चलता है, वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, वो कोई भी चीज़ में विश्राम नहीं। जब तक राम काज पूर्ण नहीं होता तब तक उनके जीवन में विश्राम नहीं होता। तो उनके जीवन का प्रभावशाली प्रसंग उनके जीवन में प्रभाव डालता है और वो प्रभावित होकर वो श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रसित हो जाता है। तो बाबा भी कहते हैं हमारे कर्म ऐसे हैं, कैसे मम्मा के भी कर्म कई लोग ऐसे देखे हैं, अनुभव भी सुनाते हैं कि मम्मा का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है जो हिंसक और बदले की भावना से भी आते उसके सामने जाते भी वह शांत हो जाते थे। तो कहाँ से होते हैं, कहीं ना कहीं आत्मा आंतरिक साधना करती होती, तभी उनका प्रभाव लोगों के बीच पड़ता है और वो भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए हमें निरंतर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व तो होना चाहिए हमारा। प्रभावशाली व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारे बोल में प्रभाव हो, अच्छे एजुकेटेड के बोल होते, ऐसे नहीं। प्रभावशाली बोल तभी, व्यक्तित्व तो तभी बनता है हमारे, जब हमारे जीवन में अच्छे लक्ष्य हो और उस अच्छे लक्ष्य के प्रति हमारे मन में जागरण हो, सत्कर्म करने की मन में उत्सुकता हो, तभी उसका प्रभाव हमारे लोगों के बीच बनता है। चौथा है इष्ट देव। बाबा कहते हैं आप पूर्वज हो, इष्ट हो, कोई भी आत्मा आए आपके समय उसको देने की भावना हो। आज भी हम देखते हैं दादियों के बीच जितने भी आते वो नहीं कहते हैं कि ये ज्ञान में है ज्ञान में नहीं है, लेकिन उनको इतना स्नेह और प्यार देते हैं, जो भी होते हैं या गिफ्ट देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो आत्मा उनसे ही पिघल जाती है और कहते हैं हमारे जीवन में इतना तो प्यार सम्मान आज तक नहीं मिला, तो उससे ही वो परमात्मा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और वो भी भगवान से मिलने के लिए वो आतुर होते हैं। तो देने की भावना, इष्ट देव की भावना। चौथा है कमी कमजोरी को न देखना। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि ये देवता अपने भक्तों की कमी का वर्णन कर रहे हैं, है ना, ये देवी अपनी भक्तियों की कमी का वर्णन कर रहे हैं। कई बार एक होता है कि हमें किसी की कमी या कमजोरी पता चल जाता है, 100% हमने अपनी आंखों से देखा, तो हम उसकी कमी को लंबा चौड़ा विस्तार मसाला छोक मार के उसको बताते हैं लोगों को। तो ये कोई देवताओं के लक्षण नहीं है, है ना। बाबा कहते हैं आप देख भी लो तो उसको संभालो, आपने बस देखा, अगर आपने अपने मुख से बोला तो प्रसार हो जाएगा, वातावरण में फैल जाएगा, कहीं ना कहीं वो आत्मा ऊपर उठने से रुक जाएगी। भले आपने देखा तो आप उस आत्मा से जब भी मिलते हो या देखते हो तो ऐसे मिलो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। कई बार ऐसे होता है कि उसने भी आपको देखा और आपने भी उनको देखा, तो उनको पता होता है कि इसने देखा है मुझे गलत, कुछ जो मर्यादा के विरुद्ध है, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे मिले उनसे, ऐसे बात करें कि हमें कुछ पता नहीं। और जब वो आत्मा को खुद ही रिलाइज हो जाएगा तो वो कमी खुद ही छोड़ जाएगी। कहा जाता है हमारे बोल में इतनी शुभ भावना और पवित्र भावना नहीं होती जो हमारे बोल से कोई वो अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुस्सा होता है, नफरत होती है, घृणा होती है उनके पास, इसलिए हमारे बोल का प्रभाव नहीं होता। कई भाई ऐसे भी सुनाते हैं भगवान के प्रति, हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं होती है और हर आत्मा को सामने रखकर बाबा मुरली चलाते, फिर भी उनके बोल को सुनकर आत्मा नहीं परिवर्तन होती, तो हमारे अंदर तो उतनी शुभ भावना होती ही नहीं आत्माओं के लिए। इसलिए खराब बोलने से अच्छा है कि ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। तो हमें कमी को वर्णन नहीं करना चाहिए किसी भी का, कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अगर वो आत्मा परिवर्तन चाहती है तो खुद ही परिवर्तन हो जाएगी, और उनके परिवर्तन करने के लिए तो भगवान ने उनका हाथ थामा है ना। तो इस तरह से हम उनकी कमी को नजरअंदाज करें, ना प्रसार प्रचार करें। तो हमें किसी की भी कमी कमजोरी को ना देखना है। बाबा कहते देख भी लिया और दिख भी गए रास्ता चलते तो उसको किसी को ना बताएं। तो यही हमारे प्रति उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है या पालना की भावना है। तो इस तरह से हम कमी को नजरअंदाज करें। दातापन की भावना, देने की भावना। अगर कोई कुछ कर रहा है और वो ठीक से नहीं कर पा रहा है तो हम उसे करके दिखाएं कि इस चीज को ऐसे करता है, चाहे कोई ट्रेनिंग ले रहा है, कोई सीख रहा है, कोई कुछ बता रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम उनको बताएं, अगर हम उस कला में पारंगत है, उस चीज में आता है हमको, तो हम उसको करके दिखाएं। क्योंकि जब हम करके दिखाते हैं तो उसको बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है, छोटी आयु में रहता है तो उनको नहीं आता, वो बार बार गिरता है, तो हम सोचते हैं अगर इस साइकिल चलाना सीख जाए तो अपनी मंजिल अकेले ही तय कर सकता है। तो उसको बताया जाता है कि कैसे कैसे सीखा जाता है, तो उसको कई बार पीछे से पकड़ते हैं, कोई पैडल ऐसे घुमाना, ब्रेक में इतना ध्यान रखना, तो जो सीखा होता है वही वो अपने अनुभव शेयर करता है। तो हम उसको इस तरह से ट्रेनिंग दें कि वो अपनी मंजिल अकेले ही तय कर पाए। वैसे भी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के मार्ग में हर आत्मा अकेले है, न उनसे कोई आगे है, न कोई पीछे है, न कोई दाया है, न कोई बाबा। इसलिए हम उसे इस तरह से ट्रेनिंग दें कि वो अपने लक्ष्य में अकेले ही चल पाए, किसी साथी की आवश्यकता उनके मन में उत्पन्न ना हो। इस तरह से हम ट्रेनिंग दें ताकि वो अपने लक्ष्य पर पूर्ण तरह से पहुंच सके। तो दाता की भावना, देने की भावना, अच्छी गाइडलाइन देने की भावना। अब वो ये अपेक्षा ना रखे कि मेरी बात क्यों नहीं मानता। आधा टकराव इसमें इस कारण होता है कि मैं इसको अच्छी गाइडलाइन देता हूं तो मानता क्यों नहीं मेरी बात, इनके प्रति मेरी शुभ भावना है। तो शुभ भावना नहीं होती है, कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है हमारे मन में उनके प्रति, अगर ये सीख जाए तो मेरा नाम होना चाहिए। तो इस तरह की अगर भावना होगी तो हमारी बात को इग्नोर करेगा। तो देना है, बस केवल देना है, उनसे लेने की भावना ना हो। हाँ, मनसा सेवा, भक्तों की मनसा सेवा एक पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं आप जब सवेरे सवेरे उठते हैं तो तुम्हारे भक्त आपसे पीछे उठते हैं। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, हम बाबा से पहले शक्ति लेते हैं और तुम्हारे भक्त जो तुम्हारे विरुद्ध है, वास्तव में विरुद्ध में कोई काम नहीं करता अगर देखा जाए तो, कहीं ना कहीं उनकी मन की जो इच्छाएं होती वो पूर्ण नहीं होती, और वो पूर्ण करने के लिए ही अपने भगवान के पास जाते हैं। कई हम मंदिरों में जाके देखते हैं तो कई भक्त होते हैं जो जब उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो शराब पी के अपनी देवी या देवताओं के पीछे जाते हैं और उनके पूरा भड़ास जो का है गुस्सा वो निकालते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा है और उनकी देवताएं पूर्ण नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भक्तों की पूर्ण करें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले हमें उनकी इच्छाओं को, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, निरंतर श्रेष्ठ और शुभ भावना हो हर एक के प्रति। तो जो उनके मन में जो इच्छाएं हो पूर्ण हो, तो कैसे होंगे, जब हमारे मन में श्रेष्ठ इच्छाएं होंगे, हमारे लेने की इच्छा नहीं होगी। जब हमारे मन में लेने की इच्छा है दूसरे से, तो हम दूसरों की इच्छाएं क्यों पूर्ण, तो मनसा सेवा करें, श्रेष्ठ संकल्प करें, शुभ भावना और शुभ कामना रखें। ये तब मन में होता है जब हम सर्व के प्रति एक समान भाव उत्पन्न होता है, तभी हम शुभ भावना रख सकते। नहीं तो किसी के प्रति ज्यादा स्नेह, किसी के प्रति कम स्नेह, किसी को इग्नोर कर दे, तो हमारे मन में निरंतर शुभ भावनाएं नहीं रहती लोगों के प्रति। किसी एक को आगे बढ़ाना ना किसी एक को पीछे करना, तो शुभ भावना नहीं रहती। तो इसमें कहते हैं भक्त भी क्या कहते हैं, गुरु या शिष्य जो होते हैं भगवान भी पक्षपात करता है, ऐसे कहते हैं। तो इस क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, और इच्छाएं पूर्ण ना होने के कारण ये सब मन में भाव उत्पन्न होता है। कहीं कहीं ने भक्तों का भी कर्तव्य बनता है या शिष्यों का भी कर्तव्य बनता है कि हम गुरु आज्ञा को श्रद्धा से पालन करें। आज भी बाबा ने कहा कि प्रतिज्ञा करो, जो बाप से आपने प्रतिज्ञा की है उसको पालन करना है। कहीं ना कहीं हम बाबा की प्रतिज्ञाओं को भी हम नजरअंदाज करके मन मत और परमत पर चलने लगते हैं, तो कई ब्राह्मण सोचते हैं कि बाबा भी हमसे नाराज हो गया है। कहीं ना कहीं हम उसकी बुद्ध भगवान हमसे नाराज नहीं होगा, हम भगवान से नाराज हो गए, इसलिए तो उनकी श्रीमत और मर्यादाओं के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। अगर हम भगवान से खुश होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनकी श्रीमत पर चलते। तो इच्छाएं बहुत सारी होती है भक्तों की, और हर इच्छाएं भगवान पूर्ण नहीं करता, क्योंकि जिस इच्छा में भक्तों का अकल्याण है ना, शिष्यों का अकल्याण है, वो इच्छाएं भगवान पूर्ण नहीं करता। क्योंकि भक्त और शिष्य में यही होते, गुरु अनुभवी होता है, भगवान अनुभवी होता है, और जो शिष्य होता है वो कम अनुभव होता है उनके पास। तो अनुभव की सबसे बड़ी जीवन में महत्व रखता है, तो अनुभव के कारण ही जो उनके बड़े होते हैं या भगवान होते हैं, वो शुभ चिंतक होते हैं। इसलिए हम ये नहीं सोचे कि हमारी हर इच्छाएं क्यों पूर्ण नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ण ना होने के कारण ही आत्मा हमारे अगेंस्ट होती है, विरुद्ध में काम करना से, तो हमें लगता है कि ये हमारे विरुद्ध में काम कर रहे, तो हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करें। तो हमें मनसा सेवा करनी चाहिए ऐसी आत्मा। कई बार हम सोचते हैं मनसा सेवा जा रही है कि नहीं जा रही है, तो हमें निगेटिव संकल्प नहीं कर रहे, दे रहे हैं मतलब जा रही है, तो मनसा सेवा करना है अपने भक्तों के लिए। इनकी सेवा यही है सबसे, बाबा अच्छा कहते हैं मनसा सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है, क्योंकि इससे सेवा बोल से करेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध हो जाता है, डिबेट नहीं करना, बाबा कहते हैं हाँ हमेशा डिबेट नहीं करता, सम्मान देना है। सूरज भाई भी अपने क्लास में सुना रहे थे कि आर्य समाजी और ब्रह्मा कुमारी के एक बार प्रदर्शनी लगा था, तो बिल्कुल ही फाड़ देते, तो बिल्कुल नहीं मानते थे, हाँ पाखंड के पर्चे बांटते थे। तो ऐसी आत्माओं को हम बोल से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर सकते, उनके प्रति शुभ भावना ही हमारे लिए सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, इसके सिवा कुछ नहीं। कहा जाता है जब सब शस्त्र खाली हो जाते हैं तो एक ही शस्त्र है कि बस अच्छा सोचो, इसके सिवा और कुछ नहीं है। जब हम अच्छा सोचेंगे तो उसका फिर बाकी तो उस पार्ट, उस आत्मा का भी अपना पार्ट है ना, उस पार्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। तो कहीं ना कहीं पार्ट का भी महत्व है, ड्रामा में उस आत्मा का पार्ट क्या है, भाग्य क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर किसी आत्मा का पार्ट प्रजा बनने का है और लेकिन हम उनको राजा बनाना चाहते हैं तो कैसे संभव हो सकता है, तो वही, लेकिन उसका पार्ट फिक्स है ना, तो ये कैसे संभव हो सकते हैं। मेहनत तो हर एक के लिए, देखो माँ बाप की चार पुत्र है तो चारों के लिए एक जैसा शिक्षा और एक जैसा भाग्य देते, लेकिन उनका अपना भाग्य वो अपने कर्म के साथ निर्धारित करता है। पालना तो श्रेष्ठ सबके लिए एक ही जैसा होता है, लेकिन उनका भाग्य भी तो अपना है ना। एक पुत्र जन्म लेता है तो आजाद बन जाता है, और एक पुत्र जिसको कोई जानता ही नहीं, लेकिन दोनों की पालना तो माँ बाप ने ही की ना, अच्छे शिक्षा भी दिए, अच्छे संस्कार भी दिए, लेकिन एक कहाँ देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, और एक को कोई जानता भी नहीं, उनके नाम को भी नहीं पता किसी को, तो कहीं ना उस आत्मा का अपना भाग्य भी है ना। तो विरोध जो करते हैं उनके लिए हमारे अंदर शुभ भावना के लिए और कुछ नहीं, बोल से तो एक बार वो जयंती दीदी एक बार जयंती दीदी सुना रही थी कि अगर किसी की भक्ति पूरी नहीं हो जाती और ज्ञान में आ जाती तो उसको भक्ति पूरी करनी होती, भगवान वाचे, लेकिन जो जयंती दीदी ने अपने अनुभव में सुनाया वो मैं बता रहा हूँ। तो कह रही थी अगर किसी, संस्कार ही कहा जाए, तो कह रहे थे कि अगर किसी, वो उनका शब्द यही था कि अगर किसी की भक्ति थोड़ी बहुत बची है तो उसको किस तरह से पूरा। तो एक बार शिवरात्रि का महोत्सव था शांतिवन में, तो वो कह रहे थे कि मैंने कभी अपने लाइफ में अगरबत्ती नहीं घुमाई थी, तो मुझे शिव है ना, शिवलिंग जो बनाया था, तो मुझे कहा गया दीदी जी आप इनका उद्घाटन करो, तो मुझे अब पहली बार मैंने अगरबत्ती घुमा कि शिवलिंग में ऐसे करने पड़ा, तो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई हो और उसे करना पड़ा, और सभी के सभी ब्राह्मण आत्मा वहां पे बैठे, अब क्या कहा जाए इसको, क्या उनकी भक्ति अधूरी है, सभी के सभी ब्राह्मण ज्ञानी आत्मा उसे कहा जाए, क्या कहा जाए अब इसको, दिखावा कहा जाए या क्या कहा जाए, कहीं ना कहीं एक नियम जो है, जो परंपरा है, उसको निभाना पड़ रहा है, इस तरह से भी कहा जा सकते हैं हम, तो इस तरह से पालना तो इस तरह से हमें पालना करनी है। बाकी सबके लिए यही शुभ भावना रखे हम कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, जितने हम शुभ भावना रखते जितना हमारी शुभ भावना काम करती है, कहा जाता है लोग हमारे बोल से या तो बिगड़ जाएंगे या तो सुधर जाएंगे, इसलिए सुधारने का प्रयास ना करें तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कर्म करके आप दिखा दो। कहा जाता है कर्म इंसान की पहचान होती है, जिस इंसान का जैसा कर्म होता है वो सबसे बड़ा दानी होता है, इसलिए अच्छा कर्म करके आप दिखा दो तो शायद वो आत्मा बदल जाए या सुधर जाए। इसलिए बोल से आज के जो समय है और माहौल है उससे सुधरने वाले की तो कोई संभावना ही नहीं, इसलिए अच्छा देखो सुनो भले लेकिन बोलो कुछ मत, चुप रहो, एक चुप सदा सुख, जो सुशील भाई ने कहा सौ सुख, तो इस तरह से हम शुभ भावना हर एक आत्मा के प्रति रखें, जो बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं सिखाए उस पर निरंतर चलते रहें, और दूसरों को नियम का पाठ अगर पढ़ाए तो आप एक पढ़ाओगे तो वो दस पढ़ाएगा, इसलिए हम सुन नहीं सकते फिर, इसलिए हम करते रहें निरंतर जो भी बाबा ने हमें सिर्फ मत दी है, और चाह के भी किसी की निंदा ना करें, नहीं तो उस आत्मा को बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है। अगर ज्ञानी आत्मा की निंदा करता है तो फिर और ही ज़्यादा दुश्मनी कहा जाए या बदले की भावना या मौके की तलाश होती है उन आत्माओं को। तो इस तरह से हम खामखा अपने ब्राह्मण जीवन में मुसीबतों का आह्वान ना करें, इसलिए दिखता है तो देख लें लेकिन वर्णन ना करें किसी भी प्रकार का। अच्छा, ओम शांति।
से सजे गुलशन।